ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम लोग श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक 42 चर्चा करेंगे। तस्य इदम् उपगायन्ति आशुभस्य एह राजऋषेः मनसापि महात्मनः न अनुवर्त्म अर्हति। नृपः मक्षिका इव गरुत्मतः तस्येदम् उपगायन्ति। तस्येदम् उपगायन्ति आशुभस्य राजर्षेः। आशुभस्येह राजर्षेः मनसापि महात्मनः। मनसापि महात्मनः नानु अनुवर्त्म अर्हति। नानु अनुवर्त्म अर्हति नृपो। नानु अनुवर्त्म अर्हति नृपो। मक्षिकेव गरुत्मतः तस्येदम् उपगायन्ति आशुभस्येह राजर्षे मनसापि महात्मनः नानु अनुवर्त्मार्हति नृपो। मक्षिकेव गरुत्मतः तस्येदम् उपगायन्ति आशुभस्येह राजर्षे मनसापि महात्मनः नानु वर्त्मार्हति नृपो। मक्षिकेव गरुत्मतः। तस्य जड़ भरत का इदम् यह यशगान उपगायन्ति गाते हैं आर्षभस्य ऋषभ देव के पुत्र का इह यहां राज ऋषे है महान ऋषि तुल्य राजा का मनसापि मन से भी महात्मनः महात्मा जड़ भरत का न नहीं अनुवर्त्म अर्हति पथ का अनुसरण करने में समर्थ नृपः राजा मक्षिका मक्षी इव सदृश गरुत्मतः श्री भगवान के वाहन गरुण का अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री विग्रह श्री प्रभुपाद के द्वारा जड़ भरत के उपदेशों का सार सुना चुकने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुण द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य है और सामान्य राजागण मक्खियों के समान हैं। मक्खियां गरुण के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं। कृपा दोहराइए, जड़ भरत के उपदेशों का सार सुना चुकने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुण द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य है और सामान्य राजागण मक्खियों के समान हैं। मक्खियां गरुण के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं। तात्पर्य, भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये एतामपि सिद्धानां क्वचिन् मा वेति तत्त्वतः। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक संसिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला मनुष्य ही मुझे तत्त्वतः जान पाता है। भक्ति का मार्ग अनेक शत्रुओं पर विजय पाने वाले राजाओं के लिए भी अत्यंत कठिन है, भले ही ये राजा युद्ध भूमि में विजयी रहे हों, किंतु वे देहात्म बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे अनेक नेता, स्वामी, योगी और नामधारी अवतारी पुरुष हैं जो बौद्धिक चिंतन में लगे रहते हैं और अपने को पूर्ण पुरुष के रूप में विज्ञापित करते रहते हैं, किंतु अंततः वे सफल नहीं होते। निसंदेह भक्ति मार्ग का अनुगमन अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महाजनों के पथ का अनुसरण करना चाहता है तो वह अत्यंत सरल हो जाता है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का पथ उपलब्ध है, जिनका आविर्भाव पतित आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ। ये पथ इतना सरल एवं सुगम है कि कोई भी श्री भगवान का नाम जप करके इसे ग्रहण कर सकता है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। हमें संतोष है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा इस पथ का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि अनेक यूरोपीय तथा अमेरिकी युवा तथा युवतियां इस दर्शन को गंभीरता से ग्रहण करके क्रमशः पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय के पूर्व में हम लोगों ने जड़ भरत रहुगण का चरित्र, जड़ भरत द्वारा जो उनको उपदेश दिए गए उनको श्रवण किया। अंत में जड़ भरत जी ने रहुगण को क्षमा कर दिया और इस अध्याय का जो आरंभ है इसको कहा गया। इसके पहले भी जो सुखदेव गोस्वामी जड़ भरत के द्वारा जो हमें आख्यान सुना रहे हैं उसको परोक्ष विवरण, एक होता है प्रत्यक्ष और परोक्ष। जैसे भगवान की भक्ति जो है हम लोग भगवद गीता में देखते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मधुमोत्तमम प्रत्यक्षम अवगाम्यहम। प्रत्यक्ष इसका हम जो फल है भक्ति का वो प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई भूखा व्यक्ति है उसको जब हम भोजन प्रसाद देते हैं तो उसको कैसे तृप्ति होती है ये प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति का पालन करने से भगवान की भक्ति को हम प्रत्यक्ष इसका फल प्राप्त होता है। अन्य मार्ग जो हैं ज्ञान मार्ग योग मार्ग कर्म मार्ग उनको जब तक हम पूरे रूप से संपन्न न करें तब तक हम उसमें सफलता को प्राप्त नहीं करते। परंतु भक्ति का मार्ग या भक्ति का पथ ऐसा है कि इसमें कोई हानि नहीं है। फिर भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में कि नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस मार्ग में कोई भी हानि नहीं है। हम जिस स्तर पर पहुंच गए हैं उसी स्तर से हम अगले जन्म में आगे प्रगति करेंगे। हमारा जन्म ऐसे घर में होगा शुचिनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो विजायते, यहाँ रह के हम अपनी भक्ति आगे बढ़ा सकें। मान लीजिए क ख ग तक हमने किया और हमारा शरीर किसी कारणवश छूट गया तो अगले जन्म में हम घा से शुरू करेंगे, क से नहीं। यही कारण है कि एक परिवार में यद्यपि सबको एक ही वातावरण प्राप्त होता है माता पिता के द्वारा, परंतु संतानों का अलग अलग स्वभाव अलग अलग प्रकृति हो जाती है उनके पूर्व जन्म के अनुसार। तो इस अध्याय में एक बद्ध जीव का उदाहरण देकर के बद्ध जीव को एक व्यापारी के समान माना गया है और इंद्रियां वन में एक तरह से हिंसक पशु श्रृगाल शब्द आया है जैकॉल उसके समान है। उस वन में हमें और भी हिंसक पशु बंदर जैसे भोग वासना में लिप्त पशु भी हमें प्राप्त होते हैं। तो कम बुद्धि वालों के लिए इसको कहा गया है रूपक, एक उदाहरण देकर के, जैसे पहले भी हम लोग भागवत में ही देखे पुरंजन पुरंजनी का भी एक आख्यान आया था जिसको उसके रूपक के द्वारा उसके उदाहरण के द्वारा जो गूढ़ तत्व तो होता है उसको समझाया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई तरह के विषय वस्तु का वर्णन पहले हो चुका है। शुद्ध आत्मा जब कृष्ण की सेवा को त्यागता है तब कृष्ण उसको इस संसार का सुख तथा कथित सुख भोगने के लिए भेज देते हैं। प्रेम विवर्त नामक एक ग्रंथ है जगदानंद पंडित का, इसमें आता है कि कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे। विभिन्न योनियों में कभी हमें ब्रह्मा का पद मिलता है, कभी हमें चीटी का पद मिलता है, प्रकृति गुणों के अनुसार। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है कि बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं मोर आश, कीटे के जन्म होई जत तू या दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोर आश। मुझे कीट का भी जन्म मिले, कीड़े का भी जन्म मिले, मुझे वो स्वीकार है यदि भक्त के घर में जन्म मिलता है। और बहिर्मुख वही शब्द जो यहाँ पे बताया, कृष्ण बहिर्मुख, अर्थात यदि हम कृष्ण भावनामृत से रहित हैं तो ऐसी अवस्था में हमें ब्रह्मा जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे सबसे पुण्यात्मा जीवात्मा को वो पद दिया जाता है। ब्रह्मा भी दो प्रकार के होते हैं, एक जीव कोटि ब्रह्मा और ईश्वर कोटि ब्रह्मा। जब इस कभी कभी क्या होता है कि जब हमें पुण्यवान जीव उपलब्ध नहीं होता तो स्वयं भगवान जो हैं ब्रह्मा का पद लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक छोटी कथा ये आती है कि एक बार चतुर्मुख ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने द्वारका गए, तो द्वारपाल से कहा जाके भगवान से कहो कि ब्रह्मा जी उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो द्वारपाल गए अंदर भगवान को कहा, तो कृष्ण ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल आके बाहर आए, बोले भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका बोलो कि जो चार कुमार के जो पिताजी हैं सनक सनक सनातन, उनके पिता आए यहाँ पे दर्शनार्थ। तो भगवान ने कहा ठीक है, उनका बुलाया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और बोले कहिए ब्रह्मा जी आप आगमन किस हेतु हुआ है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर आपने द्वारपाल से ये प्रश्न किया कि पूछो कौन से ब्रह्मा जी हैं, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि क्या बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, मेरे अतिरिक्त भी कोई और ब्रह्मा जी हैं। भगवान जब ये सुना तो थोड़ा सा भगवान मुस्कराए, बोले अच्छा। उन्होंने मन ही मन ब्रह्मा लोगों का आवाहन करना शुरू किया, तो एक एक करके ब्रह्मा जी आए, तो किसी के 8 मुंह, किसी के 10, किसी के 100, किसी के 1000, ऐसे मुख वाले ब्रह्मा जी आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और उन झुंड में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी थे उसमें तुलना की गई है कि जैसे हाथी के झुंड में खरगोश होता है, ऐसी उनकी स्थिति हुई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आपने क्यों बुलाया, बोले बस मैं तुम लोग को देखना चाहता था। तो ब्रह्मा ने समझाया कि जिसका ब्रह्मांड मतलब असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्म संहिता में आता है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि भूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की अंग कांति में जो प्रभा है, जो ज्योति है, उसमें कोटि कोटि दंड कोटि ब्रह्मांड जो है, तो ब्रह्मांड के माप के अनुसार ब्रह्मा जी का भी सिर होता है। तो उदाहरण के लिए चाहे ब्रह्मा हो चाहे चीटी हो, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं होते तब तक हम संसार बंधन से नहीं छूट सकते हैं। उसके आगे सकाम कर्म और अन्य प्रकार का भी व्यक्तियों का वर्णन हुआ है। जो लोग भोग वासना में युक्त रहते हैं उनको प्रभुपाद ने शब्द उपयोग किया है बोगस सेवियर, उनको चीटर चीटेड, उनके गुरु महाराज कहते थे कि क्योंकि कोई लोग संयम पसंद नहीं करते इसलिए उनको ऐसे ही गुरु मिलते हैं जो कहते कुछ मत करो, मुझे तुम कुछ पैसा दे दो फीस के रूप में और तुम मुक्त हो जाओगे। जो धर्म के चार अंग होते हैं, सत्य, तप, शुचि और दया, और ये चार अंग चार पाप करने से जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद ने मुझे एक पत्र में लिखा कि पूरा विश्व का समुदाय इन चारों पापों में लिप्त है, परंतु हम लोग अपने इस्कॉन में भक्तों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे इन चार पापों से मुक्त हुआ जाए। नरोत्तमनाथ ठाकुर का भी भजन है कि नाना योनि सदा फिरे, करदर्तिये करे भक्ष। अनादि काल से, जैसे श्री प्रभुपाद लोग तात्पर्य में समझाते हैं कि बड़े बड़े राजा जो युद्ध में विजयी हुए, परंतु देहात्म बुद्धि, ये देह आत्मबुद्धि से उस पर विजय पाना बहुत उनके लिए संभव नहीं। यहाँ तक कि जो निराकारवादी लोग हैं, मायावादी लोग हैं, वो भी इस संसार को त्याग देते हैं ये सोच करके कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हालांकि वैष्णव दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्म जब सत्य है और जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है तो जगत भी सत्य है, यद्यपि ये अस्थाई है। तो नरोत्तमनाथ ठाकुर के अनुसार हम इसी योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और अंत में जब हमें एक शुद्ध भक्त की प्राप्ति होती है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और हमें भक्ति लता जो है उसका बीज हमारे हृदय में जो है गुरु अपने कृपा से उस पर सिंचन करते हैं। इस श्लोक में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे आर्षभस्य, ऋषभ देव के पुत्र। जब किसी व्यक्ति को हम अपना आत्मीयता दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, तो बजाय उसको सीधे बुलाने के उनके पिता के माध्यम से, या जैसे हम कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में मुकुंद की घरवाली, मुकुंद की पत्नी कहने के अनुसार कि मुकुंद की घरवाली, उसी प्रकार हम लोग एक और कथा में देखते हैं भागवत में भी, जब भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिया और वो उनके पीछे ही दौड़ा कि आपके सिर पे ही हम हाथ रखेंगे और पार्वती जी को अपहरण करेंगे, तब भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने क्या कहा, ये नहीं कह रहे भस्मासुर, अरे कह रहे अरे शकुनी के पुत्र। अरे बोले ये तो हमको हमारे पिताजी को जानते हैं तो जरूर हमसे परिचित हैं। वो फौरन रुक गए, बोले कहाँ आप पसीने से लथपथ होकर के इस शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हैं? शरीर ही सब उसका साधन है। बोले नहीं नहीं अभी मुझसे बोलिए नहीं, मैं उसको शंकर जी को पकड़ने जा रहा हूँ। बोले आप उनकी बात का विश्वास करते हैं, वो तो झूठे है ही हैं, श्मशान में रहते हैं, भूत प्रेत उनके साथ हैं, उनकी बात का कभी विश्वास नहीं करता। बोले नहीं नहीं, बोले अच्छा सा कि ये आप ये एक परीक्षण कर सकते हैं कि उन्होंने शंकर जी ने आपको वरदान जो है वो सही दिया है या झूठा दिया है, तो ऐसा करिए आप अपने सिर पे ही हाथ रख के देख लीजिए, यदि सच है तो कोई बात नहीं और झूठा है तो फौरन उनको आप दंड दीजिए। भगवान की माया प्रबल, वश होकर यहाँ उसने बोले भाई मेरे पिता के मित्र हैं, जानते हैं तो मेरी भलाई के लिए ही कह रहे होंगे ना, उसने अपने सिर पे हाथ रखा वो भस्म हो गए। ऐसे हम लोग शिक्षाष्टक में देखते हैं आई नंद तनुज किंकरम, सीधा हम कह सकते हैं हे कृष्ण, परंतु हे नंद बाबा के पुत्र, हे नंद महाराज के पुत्र, पतितम मां विषय में भवाम बोधो, मैं इस भवसागर में गिरा हूं, कृपा करके मुझे अपनी ओर ग्रहण कीजिए। राजर्षि शब्द भी आया है, राज ऋषि, राजा होते थे मगर राजा के रूप में ऋषि के रूप में उनका व्यवहार रहता था। भगवद्गीता में ही आता है चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः, राजर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, राज ऋषि शब्द। और पहले जमाने में राजा लोग जो हैं वो उनमें ऋषि के गुण स्वाभाविक होते थे, और कोई वहाँ ब्राह्मण लोग जो थे वो कभी राजा की सेवा नहीं स्वीकार करते थे। सेवा करना शूद्रों का कार्य है, और यदि राजा ने ठीक काम नहीं किया तो ब्राह्मण लोगों की जो समिति होती थी वो राजा को हटा भी देती थी। वेन राजा का चरित्र हम लोग जानते हैं, कैसे उनको दुराचारी हो गए तो उनको शिष्यों ने हटा दिया। महात्मना शब्द भी इसमें महत्व का आता है कि महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। महात्मा कौन है? जो मेरे दिव्य प्रकृति के अधीन है। महामाया योग माया या अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी जी, इनके अधीन होकर के जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है वो महात्मा है। और वही व्यक्ति हम लोग के दृष्टि के अनुसार जो है वो सम्मानीय है, वो बड़ा है। चैतन्य चरितामृत में ही आता है कि यही भजे से ही बड़ो अभक्तहीन क्षार, अकृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। बड़ा वही है जो कृष्ण का भजन करता है, नहीं तो अभक्त हीन क्षार, जो लोग भक्त नहीं हैं वो हीन प्रकृति के व्यक्ति हैं। और कृष्ण भजन में कोई जाति और कुल का कोई विचार नहीं है। हम लोग इसी श्लोक में देखते हैं कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी योनि के लोग भगवान के भक्त बने हैं, बन सकते हैं। सवय पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षये अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसीदति। ये भक्ति जो है ये इसका कोई कारण नहीं है और इसको कोई सांसारिक चीज रोक नहीं सकती कि अच्छा मेरे पास धन होता तो हम सेवा करते, ये होता नहीं, ये बहाना हम नहीं बना सकते हैं। हमारे पास जो योग्यता हो, भगवान जो है वो असीम अनंत हैं, कृष्ण अनंत हैं और उनकी सेवा भी जो है वो अनंत है। जिसके पास जो तन मन धन उससे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं तो जय भजे सही बड़। फिर एक छोटी कथा आती है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आए, बोले हम आपको भिक्षा के लिए अपने घर में बुलाना चाहते हैं। तो स्वरूप दामोदर जो उनके सचिव थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाप्रभु उसी के यहाँ जाते हैं जो लखपति हो। तो ब्राह्मण बोला, अरे मेरे पास तो एक बूटी कौड़ी भी नहीं है, आप लखपति की बात कर रहे हैं, मैं कैसे महाप्रभु को अपने घर पर बुला पाऊंगा। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, यहाँ लखपति का मतलब ये है लक्ष्मी नहीं, पैसा नहीं, जो नित्य प्रति 100,000 माला मतलब 100,000 नाम 64 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करता है उनके यहाँ ही चैतन्य महाप्रभु जो हैं भिक्षा के लिए जाते हैं। तो ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, बोले हाँ ये तो कोई कठिन बात नहीं है, हम भगवान का नाम हम लेंगे। जैसे कि प्रभुपाद ने उपदेशामृत में समझाया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो नियम बनाया था दीक्षा का कि 64 माला जप करने के लिए, इस्कॉन में प्रभुपाद ने पहले प्रयास किया मगर चूंकि भक्त चाहे वो विदेशी हो, और देशी भी भक्त कह सकते हैं अपने भारतीय, बहुत लंबे समय तक एकाग्र नहीं होकर जप कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने 16 माला की संख्या निर्धारित की। कि ये गोस्वामी लोग भी संख्या पूर्वक नाम गान नट भी संख्या करके वे भगवान का भजन करते थे। एक बार प्रभुपाद लंदन में शिरोदक्षाई प्रभु अब नहीं उनका शरीर उनके यहाँ गए, तो किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद क्या हम लोग माला मन में जप सकते हैं? प्रभुपाद बोले मन में क्या होता है भाई, ये आजकल का ये वो सिद्धांत है कि माला जपे साला मन मन में जपे जो उसकी बलिहारी जाऊँ। परंतु बोले नहीं, बड़े बड़े गोस्वामी लोग जो हैं रामाचारी दास ठाकुर यवन कुल में जाति कुलादि विचार होते हुए उच्च स्वर से नाम जपते थे, जो लोग नाम नहीं लेना चाहते उनके कान में पड़ेगा, जो नाम नहीं ले सकते उनके कान में पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान के भक्ति में भजन में कोई भी जाति और कुल का, यहाँ पे हम देखते हैं कि गरुण जी का उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से गरुण के का मार्ग जो है, पथ है, उसका हम लोग जो जीवात्मा लोग हैं, मक्षिका, मक्षिका संस्कृत का शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे मक्षिका का अर्थ मक्खी है, मक्षिका को बिंदी भी कहते हैं, मक्षिका स्थान है मक्षिका, ऐसा करके एक आता है संस्कृत में कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको बिना कुछ उसमें परिवर्तन किए, यदि बिंदी बिंदी लगा हुआ है उसमें वही लगाएं। तो गरुण जी का उदाहरण प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे हम लोग जानते भी हैं पास में जो ये सोनरख गांव है, सौभरी ऋषि कथा आप लोगों को सबसे परिचित है, उनकी तपोभूमि है, और कैसे उन्होंने गरुण जी के प्रति अपराध किया, एक भगवान के भक्त के प्रति। तो भगवान अपने अपराध को तो नहीं मानते हैं, बिल्कुल ही नहीं लेते, मगर अपने भक्त के प्रति अपराध को भगवान सहन नहीं करते। श्री प्रभुपाद ने फिर एक पत्र में लिखा था कि जहाँ तक व्यक्तिगत मान सम्मान का प्रश्न है, हम लोग को त्रणादपि सुनिचेन तररूपि सहिष्णुना होना चाहिए, परंतु जहाँ पे गुरु और कृष्ण की निंदा हो, तो वहाँ प्रभुपाद ने लिखा कि तुम जो हो नृसिंहदेव भगवान के समान जो है उनको तुम दंड दे सकते हो। तो अपने मान सम्मान के लिए वैष्णव जो हैं कुछ चिंता नहीं करते, परंतु जहाँ भगवान के शुद्ध भक्त या गुरु की निंदा हो, जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण भी दिया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं शिक्षाष्टक को रचने वाले हैं, उन्होंने जगाई मदाई को प्रायः उनका जो है संहार करने का ही निश्चय किया था, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से कि प्रभु आपका यह अवतार जो है प्रेम के अस्त्र के द्वारा पापियों को उद्धार करने के लिए हुआ है। तो गजेंद्र दूसरे उदाहरण हैं, ये हाथी रहते हुए भी उन्होंने भगवान की सेवा की, वरुण भगवान, हम लोग को उसकी भी कथा मालूम है कैसे निश्चय का उदाहरण है, उत्साह निश्चात धैर्यात, कि समुद्र जो है चिड़िया के अंडे को बहा ले गया, चिड़िया ने प्रार्थना किया कि अंडे वापस कर दीजिए, समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी, मगर उस चिड़िया को इतना निश्चय था, इतना डिटर्मिनेशन था कि उसने कहा ठीक है नहीं वापस करेंगे तो आपको हम सुखा डालेंगे, उसने प्रयास किया, तो गरुण जी ने देखा रहे ये तो मेरे परिवार की ही है, वो उसकी सहायता करने आ गए कि ये तो नहीं मगर मैं तुमको सुखा दूंगा। तो भक्त जो हैं वो कृपा सिंधु बेउच, कृष्ण कहते हैं कि सबको ये संदेश मत सुनाओ, भक्तों को ये संदेश सुनाओ, परंतु भगवान के भक्त उनसे अधिक दयालु हैं, और वे सार्वजनिक होकर के भगवान के संदेश को सुनाते हैं, ये एक संकट मोल लेते हैं, इसमें कई लोग अभक्त भी हो सकते हैं, परंतु उनकी कृपा से भगवान के आदेश का भी उल्लंघन कर देते हैं भगवान के प्रचार के लिए। गीता में हम जानते हैं भगवान कहते हैं कौंते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम ये घोषणा करो। अरे भाई अर्जुन क्यों घोषणा करें, कृष्ण स्वयं कह सकते हैं कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, परंतु भगवान कहते हैं अर्जुन तुम ये कहो, तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्तों का भी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोले मैं कहूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी मैं अपनी प्रतिज्ञा मुझे भंग करनी पड़ती है अपने भक्तों का मान रखने के लिए, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को वर्तमान रखने के लिए, परंतु तुम कहोगे तो मुझे कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है तो लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे। महाभारत में लोग देखते हैं कैसे भीष्म पितामह, वो भी कथा समय नहीं है, कहते भीष्म पितामह ने भगवान ने कहा भाई आपस में परिवार का युद्ध है तो मैं कोई अस्त्र नहीं लूंगा, परंतु भीष्म पितामह उस दिन इतने तीव्रता से उन्होंने युद्ध किया कि अर्जुन का रथ टूट गया, गिरने पड़ने लगे, तो भगवान फिर रथ का पहिया लेके दौड़े, और जैसे रथ का पहिया लेके दौड़े भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख लिया, और ऐसा कहते हैं कि वही जो पहिया भगवान ने फेंका फिर तो जाके जो बंगाल में जहाँ नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव स्थली है एक चक्रा, वो जाके वहाँ गिरा और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो भक्ति प्रभुपाद समझाते हैं सरल भी है और कठिन भी है। सरल किन के लिए है? जो महाजन येन गतः स पंथा, जो स्वतो वृत्ते तो देशामृत में आता है कि हम यदि अपने आचार्यों का अनुसरण करेंगे जो उन्होंने मार्ग दिखाया है तो हमारे लिए वो सरल है, नहीं तो यदि हम अपने मन के अनुसार पुराण और शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति नहीं की जाती है, भक्ति सामर सिंधु में आता है, वो समाज में उत्पात या अशांति का ही कारण बनती है। भक्ति किनके लिए सरल है? महाराज अम्बरीश का उदाहरण है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि राजा लोग जो हैं वो भी भक्ति मार्ग का अनुसरण मन में भी नहीं कर सकते हैं, सबके लिए नहीं। भगवान महाराज अम्बरीश, वो कथा फिर हम लोग नहीं जाएंगे विस्तार से, दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश की कथा, परंतु महाराज अम्बरीश ऐसे उदाहरण हैं कि राजा होते हुए भी उन्होंने नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, इन नौ भक्तियों का उन्होंने अनुसरण किया। नहीं तो कोई ऐसे भक्त हैं जो एक ही भक्ति का आश्रय लेकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हैं, सिद्धि प्राप्त किए हैं। उदाहरण के लिए परीक्षित महाराज श्रवण के द्वारा, श्रवणम, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के द्वारा, लक्ष्मी जी पाद सेवम या हनुमान जी सेवा के द्वारा, और बलि महाराज आत्मनिवेदनम, सब कुछ उन्होंने भगवान के शरण में दे दिया। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने जो श्लोक दिया है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, तो इसमें मनुष्याणाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जीवानाम नहीं। 84 लाख योनियां हैं, उनमें 4 लाख योनि मनुष्यों की है, तो उन मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है वो इस मार्ग पे, इस पथ पे चलता है, कश्चिद यतति सिद्धये, और जो इस मार्ग में चल रहा है उसमें वो कोई एक, कश्चिद यतति, कोई एक जो है वो सिद्धि को प्राप्त करता है। चैतन्य महाप्रभु का जो उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि बृहन्नादि पुराण का जो श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, 3 बार पुनरुक्ति की गई है, नहीं है नहीं है नहीं है, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, हरि का नाम ही है, भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम ही है। तो ये भक्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु कृपा से इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में इसका उद्घाटन हुआ है, फैलाया गया है, और उनकी कृपा से ही, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि विदेशों में यूरोपियन अमेरिकन भक्त जो हैं इनको ग्रहण कर रहे हैं। एक बार लंदन में ऐसे ही श्री प्रभुपाद से चर्चा हो रही थी, तो उनका देखो हम लोगों ने शास्त्रों में भगवान नाम का प्रमाण सुना है, परंतु इन विदेशी भक्तों को देख करके हम भगवान के नाम की शक्ति का थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बोले इनके माता पिता, पिता के पिता, इनके पूर्वजों ने किसी ने भी कृष्ण का नाम कभी सुना नहीं था, परंतु इन लोग कृष्ण का नाम का आश्रय लेकर के देखो किस तरह से शुद्ध हो रहे हैं और भगवत प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। कारण कि इनमें नाम अपराध नहीं था, जब नाम को मारे में मालूम ही नहीं तो अपराध करने का प्रश्न नहीं उठता। हम लोग भारतीय लोग जो हैं वो नाम का हमें महिमा है, परंतु वही जो हम लोग नाम अपराध कहते हैं, नाम ना बला देशो पाप बुद्धि विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि, नाम के बल पे पाप करना। भागवत में आता कहते हैं गज स्नान, हाथी जो है झील में खूब नहाता है और आके फिर से धूल में लौटना है, तो उसके स्नान का क्या महत्व है। ऐसे ही दूसरे मत में जैसे क्रिश्चियन आदि में कन्फेशन होता है, आप 6 दिन आप जो चाहे करिए, 7वें दिन आकर के चर्च में आप स्वीकार कर लिए कि हम बहुत निर्बल हैं और जीसस हमारे पाप ग्रहण कर लें, और अगले फिर 6 दिन वही हम करते हैं और फिर आते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है ये बहुत इसकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकते हैं। नाम के बल पे पाप करना, और विशेषकर हम ये देखते हैं कि नाम का आश्रय लें कोई बात नहीं, मन नहीं लगता, मगर जिह्वा जवान हमारे नियंत्रण में है तो उसके द्वारा उसको हम लोग 16 माला का जप करें। और जैसे एक छोटा बालक पृथ्वी पे चलता है और गिरता है तो पृथ्वी का सहारा लेकर के ही फिर खड़ा होता है, उसी प्रकार नाम का हमें आश्रय लेना है। और अपराध होता है तो भी नाम प्रभु से, गुरु और कृष्ण से हम प्रार्थना करें कि हम जो है आपका ये आश्रय के द्वारा ही, आपके सहारे के द्वारा ही हम शुद्ध हो सकेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम। अभी कल ही परसों गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, ठीक है गुरु का सम्मान एक ही दिन नहीं पूरे वर्ष पूरे जीवन भर करना चाहिए, परंतु हम लोग यहाँ परिपाटी हो गई है, विशेष कलयुग में गुरु को कोई चिंता नहीं कि शिष्य साल भर क्या करते हैं, शिष्य भी सोचते चलो हाँ, मगर गुरु पूर्णिमा के दिन आए उनको खूब दक्षिणा भेंट चढ़ाई, गुरु भी प्रसन्न और शिष्य भी प्रसन्न, परंतु ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब भारी, और वो कर्तव्य है कि शिष्य को कृष्ण की ओर खींच के ले जाए, नहीं चाहने पर भी कृष्ण की ओर गुरु जो है बलपूर्वक, हम लोग अभी भी अनुभव करते हैं यदि पिछले प्रभुपाद वपू के रूप में नहीं है, न चाहने पर भी वो धक्का मार के कृष्ण की ओर ले जाएंगे। ये एक शुद्ध भक्त का गुरु का लक्षण है। तो गुरु पूर्णिमा का वास्तव में यही महत्व है कि हम गुरु के आदेशों का हम पालन करें, उनकी वाणी वपू कभी है कभी नहीं है, परंतु जो गुरु की वाणी है वो हमेशा हमारे साथ है। प्रभुपाद कहते भी थे कि हमारे गुरु महाराज हमेशा अपने उपदेश के रूप में मेरे साथ हैं, और उनके उपदेश के, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये जो श्लोक का जो मुख्य जो प्रभुपाद अंत में समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भक्ति के द्वारा हम जो हैं इस भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, तो वही जो इतनी कठिन है वो सुसुखम आनंद के साथ हम लोग कहेंगे और सरल रूप में करेंगे यदि हम गुरु के आश्रय में। भक्ति का पहला अंग यही है, गुरुवाश्रय, गुरु का आश्रय लेना, भक्ति सामर्थ्य सिंधु में समझाया गया है। तो आप समय हो रहा है प्रसाद का, तो फिर यदि कोई शंका या प्रश्न है तो उसको पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।